भये अर्हन्ता किमः। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हिते शी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। यहाँ इस जीवन में हम जिस तरह जीना चाहें उस तरह जीने के लिए स्वतंत्र हैं, और जिस तरह हम जी रहे हैं वो हमारी कमजोरी या मजबूरी नहीं है बल्कि हमारी चॉइस है। दो ही तरह का जीवन जो हम यहाँ जीते हैं। पहला वो जीवन है जिसमें हम ये मान के जीते हैं कि हम ही इस संसार के मालिक हैं, हम ही इस संसार के केंद्र हैं और सारे लोग हमारी परिधि पर हैं और हमारी सेवा के लिए हैं। कभी कभी हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम अपने को सबका स्वामी मान लेते हैं, सबका कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। सोचते हैं कि जो चीज़ें भी हैं यहाँ वो सब मेरे लिए बनी हुई हैं, मैं ही उनका उपभोग करूँ, किसी और को वो चीज़ ना मिले। लोग मुझे ही बड़ा माने, मुझे बहुत अधिक महत्व दें। एक प्रकार का जीवन जीने का ढंग ये है जिसे हम हमेशा से जीते आए हैं। लगता जरूर है कि अरे नहीं, हम तो ऐसे कहाँ जीते हैं, पर कहीं भीतर गौर से देखें तो हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। ये जीवन जीने का एकदम अधार्मिक ढंग है। दूसरा ढंग भी है कि मैं यहाँ अपना जीवन जीता हूँ, सबके लिए जीता हूँ, सब मेरे लिए हैं, मैं यहाँ केंद्र नहीं हूँ, कोई यहाँ केंद्र नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, मुझसे जितना सहयोग बन सकता है मैं देता हूँ और मैं सबके सहयोग से जीता हूँ। एक जीने का ढंग ये भी है, ये बहुत कठिन प्रकार का है पर धार्मिक ढंग जीने का यही है। आज के दिन हम बैठे हैं तो जरूर से हमें सोचना चाहिए कि हम किस ढंग से जिए। हम अपने को केंद्र मान के सबको अपना सेवक मान के जिए, या हम सबके सेवक हैं, सबका सहयोग हमें चाहिए, हमारा सहयोग सबको मिले, इस तरह के ढंग से हमें जीना है। पहला ढंग बड़ी कठोरता का ढंग है, दूसरा ढंग एकदम मृदुता और विनय का ढंग है। एक अहंकार पूर्वक जीने का ढंग है, एक विनय पूर्वक जीने का ढंग। जीने के तो दोनों ही ढंग हैं। अब हमारी च्वाइस है, हमने आपसे पहले ही कहा कि हमें इस जीवन को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, हमें इस जीवन को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। ये एक ही जीवन हमें मिला हुआ है, हम इसे जैसा बनाना चाहें वो हमारे हाथ में है। हम अहंकार पूर्वक भी अपना संसार बिता सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं और हम विनयपूर्वक भी अपने संसार से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अहंकार हमारे अंदर श्रेष्ठताओं को उत्पन्न नहीं होने देता। जो श्रेष्ठताएं हैं वे श्रेष्ठताएं भी नष्ट होती चली जाती। जब व्यक्ति को श्रेष्ठता का दावा करना पड़े और श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना पड़े तो समझना ये श्रेष्ठताओं से विमुख होने की प्रक्रिया है। जो श्रेष्ठता का दावा करता है वो व्यक्ति अश्रेष्ठ है, तभी तो श्रेष्ठता का दावा करता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठता का अहंकार क्यों करेगा, यही तो उसकी श्रेष्ठता है। मार्ग और धर्म वो है जिसमें हम उपलब्ध होने वाली किसी भी श्रेष्ठता का, चाहे वो तप की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे हमारे यश वैभव रिद्धि सिद्धि की हो, किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर हम अहंकार नहीं करते हैं, यही तो मार्दव धर्म है। हम अपना जीवन कुछ इस तरह से जीते हैं कि चीजों को हासिल करते चले जाते हैं, लेकिन हम उन चीजों का उपयोग तो करते हैं, उन चीजों को लेकर के अपने मन को गंदा नहीं करते हैं, अपने मन में अहंकार नहीं करते हैं। अहंकार मन को गंदा करता है, अहंकार श्रेष्ठताओं को नष्ट करता है, अहंकार वास्तव में हमारे जीवन को ही नष्ट करता है, हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है। लगता नहीं है कि वो ऐसा करता होगा, क्योंकि इतनी चालाकी से करता है वो अहंकार कि हमारे पतन को भी कहता है कि नहीं उन्नति हो रही है। हम निरंतर पतित होते चले जाते लेकिन हमारा अहंकार हमें संबल देता है कि नहीं नहीं चार लोगों के बीच तुम्हारी अच्छी शान है, क्या बात करते हो। और हम खुश होकर के अपने उस अहंकार के चलते अपने जीवन में शायद धीरे धीरे अपने जीवन को ही नष्ट करते चले जाते। क्या हुआ, एक बार एक बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्ति कला इतनी अधिक सशक्त थी कि कोई किसी की मूर्ति भी बनाए तो एक बार व्यक्ति चमत्कृत हो जाता था कि ओरिजिनल कौन सा है और मूर्ति कौन सी है, इतना उसके हाथ में जादू था। एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी ही मूर्तियां बनाऊं और जब एक दिन मृत्यु आएगी तो वो भी चक्कर में आ जाएगी। और उसने कहा कि ठीक, बनाना शुरू की। उसने एक साथ अपनी 10 मूर्तियां बनाई, एक जैसी हूबहू। और जब मूर्तियां बन करके पूरी हो गईं, तब उन मूर्तियों के बीच खुद भी मूर्ति के समान होकर के बैठ गया कि अब आए मृत्यु और वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ, कहानी तो ऐसे ही कहती है कि ऐसा हुआ कि मृत्यु आई और उसने देखा कि अरे हम तो मूर्तिकार को लेने आए थे लेकिन यहां तो 11 मूर्तियां रखी हुई हैं, मूर्तिकार कौन सा है कुछ पता ही नहीं लग रहा। उसने चारों तरफ घूम करके सबके चक्कर लगाए मूर्ति के, लेकिन कहीं से समझ में नहीं आया। कहानी है, ऐसा होता नहीं है, नहीं तो मृत्यु को क्या पता लगता है, आप क्या सोच रहे थे। तो उसने घूम फिर करके देखा तो उसको लगा कि अरे ये तो सब एकदम हू बहू, अब किसको ले जाएं, 11 के 11 लग रहे हैं कि मूर्तिकार हैं और ले तो एक को जाना है। तो थोड़ी देर वो खड़ी रही और अहंकारी व्यक्ति के साथ मजा यह है कि अगर उस अहंकारी व्यक्ति की कोई छोटी सी गलती की तरफ इशारा कर दो तो वो चुप नहीं बैठ सकता। तो उस मृत्यु ने कहा कि वाह कितना अच्छा कलाकार है, मुझे भी एक बार चक्कर में डाल दिया, और तो सब ठीक है लेकिन जरा सी कमी रह गई। बस जैसे ही ये कहा कि जरा सी कमी रह गई और वो कलाकार फौरन बोला जल्दी बताओ कौन सी रह गई। तो उसने कहा कि ये कमी रह गई कि तुम्हें अपनी कला का अहंकार हो गया, चलो अब तुम्हारे चलने का मौका आ गया। मृत्यु कौन बनता है, अहंकार ही हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है। हम विनय पूर्वक भी जी सकते थे, लेकिन नहीं, हमने चुना है अहंकार। हमें लगता है कि ऐसा जीने से हम सबसे ऊपर रहेंगे, हमको इसमें ज्यादा लाभ मालूम पड़ता है। असल में ये सारा जो कषाय वाला मामला है वो लाभ हानि के चक्कर की वजह से है। हम तो प्रेम से बोलें अगर हमें लाभ हो तो, लेकिन हमें लाभ तो ज्यादा दिखता है अहंकार में। विनय में हमें कम लाभ दिखता क्योंकि लोग हमें दबा लेते हैं, और हम थोड़े से अहंकारी होते हैं तो हमें लोग बहुत महत्व देते हैं। हमें ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं वास्तव में, लेकिन उस अहंकार के चलते हमें ऐसा मालूम पड़ता है, और हम अपने जीवन को इसी तरह से अहंकार में ही कठोरताओं में गुजारते चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत अच्छे मालूम पड़ते थे, बहुत विनय से पेश आते थे, उनसे कभी भी बात करो तो बहुत बहुत अच्छा बोलते थे। वो कई बार कह चुके थे कि आप हमारे घर आइएगा, तो एक दिन ये जनाब उनके घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचे तो दरवाजे पर जैसे नॉक किया तो उनने दरवाजा खोला, उतने अच्छे से गर्म जोशी से स्वागत तो नहीं किया पर कहा कि आइए बैठिए। बैठे तो देखा कि नौकर निकला, तो नौकर को बड़ी हिराकत की नजर से उनने देखा, जैसे कि आदमी ना हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो। हाँ, फिर उनका बेटा आया तो बेटे के सामने भी ऐसे तन करके और बैठे रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि हम तो सोच रहे थे कि ये आदमी ऑफिस में तो इतने प्यारे मालूम पड़ते थे, ये अपने नौकर के सामने इस तरह उसको ऐसे हिराकत से देख रहे हैं, बेटे के सामने भी बिल्कुल एकदम तन के बैठे हैं। भीतर से आवाज आई उनकी जीवन साथी की, तो उसको भी बड़ा कड़ा जवाब दिया, जरा भी चेहरे पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर लेकिन आप तो एकदम बदल गए, ऑफिस में तो आप बड़े प्यार से मिलते हैं। बोले मैया वो ऑफिस है, ये घर है, यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है। अच्छा, यहाँ क्यों ऐसा रहना पड़ता है? बोले यहाँ इसलिए ऐसा रहना पड़ता है कि अगर नौकर के सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो नौकर धीरे से कहता कि बाबू बहुत दिन हो गए, कुछ थोड़ी सी पे बढ़ जाती तो काम आसानी से चल जाता, इसलिए जरा उसके सामने उसको संभल के रहना पड़ता है, मुस्कुरा नहीं सकते उसके सामने। अब अगर बेटे के सामने जरा मुस्कुरा दो तो बेटा पॉकेट में हाथ डालता है कि बाबू पैसे चाहिए, तो जरा बेटे के सामने भी जरा कड़े होकर के रहना पड़ता है। और अगर जीवन साथी से प्रेम से बात कर ली, मुस्कुरा के बात कर ली, तो फिर वो कोई ना कोई चीज की मांग तो रखती है कि साड़ियां बहुत अच्छी मिल रही हैं, और या कि और भी कोई बहुत सारी चीजें हैं वो अच्छी मिल रही हैं, तो फिर जरा मुश्किल हो जाती है। तो फिर मुझे यहां घर में ऐसा रहना पड़ता है। देखो तो जहां हमारे जीवन का आनंद ही खो जाए और हम अपने जीवन का आनंद खो करके और कुछ थोड़ी सी चीजों को बचाने के लिए क्या उपाय रच रहे हैं, यही तो हमारा अहंकार है। हम सोचते हैं कि शायद ऐसे जीने से क्या बचा लेंगे, हम दो पैसे बचा लेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी तो हम निरंतर गंवाते चले जाते हैं। क्या इस तरह का अहंकार आपको पसंद है? मेरे ख्याल से तो ये अहंकार किसी को ही पसंद नहीं होगा, लेकिन मजा तो यही है कि हम अहंकार पसंद नहीं करते पर अहंकारी रहे आते हैं, हम क्रोध पसंद नहीं करते लेकिन क्रोधी बने रहते हैं, दूसरे का क्रोध हमें पसंद नहीं है, अपना क्रोध हम करते चले जाते हैं, दूसरे का मान हमें पसंद नहीं है लेकिन स्वयं हम मान और अहंकार करते चले जाते हैं, यही कहीं हमारी भूल है। हमें थोड़ा सा अपने दृष्टि को बदलना चाहिए। दृष्टि को बदलने के लिए एक बहुत छोटी सी घटना फिर आपसे कहूं। एक साधु जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, एक युवक पहुंचा, वो देखता था कि ये बड़ी विनय के साथ बड़ी शांति के साथ रहते हैं, इनके जीवन का राज क्या है? उसने जाकर के साधु से पूछा कि आप इतने शांति और इतने प्रेम से रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि आप ऐसे कैसे रह लेते हैं। साधु ने कहा कि आओ मेरी कुटिया से बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। और साधु ने दिखाया कि ये दो पेड़ जो लगे हैं वो मुझे हमेशा संदेश देते हैं, ये मेरे गुरु हैं और इनसे मैं शिक्षा पाता रहता हूँ और अपने जीवन को बड़े प्रेम से और बहुत शांति से जीता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा ये पेड़ आपके गुरु हैं, आप इनसे क्या शिक्षा लेते हैं? तो साधु ने कहा कि मेरी कुटिया के सामने ये दो पेड़ मैं वर्षों से देखता हूँ, एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन कभी मैंने छोटे को ये कहते नहीं सुना कि इस बड़े पेड़ ने मेरे बाजू में उग कर सारा पानी अपनी जड़ों से सोख लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बल्कि छोटा ये कहता है कि इस बड़े की छाया में मुझे बड़ी शांति मिलती है और बड़ा बड़ा कभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता कि ये मेरे से छोटा है, इसको क्या करूँ, इसको गिरा दूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ या इसका सारा पानी इसमें से खींच लूँ। इस प्रकार का कभी छोटे को दीन ही होते नहीं देखा, कभी बड़े को अहंकार करते नहीं देखा। दोनों लहलहाते हैं, हवाएं चलती हैं, दोनों शांति से जीवन जीते हैं। मैंने भी अपने जीवन का यही नियम बना लिया है कि यहाँ छोटा और बड़ा कोई नहीं है, सब अपने आप में बड़े हैं। जो अपने में बड़े हैं वे बड़े हैं और जो अपने आत्मा में समृद्ध नहीं हैं वे ही छोटे हैं। ये बहुत सीधा सा छोटे और बड़े का गणित, लेकिन हम क्या करें, हम तो यहाँ हमेशा कंपेयर करते हैं, यहाँ हम कंपेयर करके और अहंकार ही पुष्ट कर लेते हैं। जब भी कहीं कोई कंपैरिजन हम करें तो कंपटीशन ना करें। कंपेयर करना बहुत बुरी बात नहीं है, कंपेयर करें अच्छी चीज़ों से कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा बनना चाहिए, ये भी फिर भी ठीक है, लेकिन इसे मैं कैसे नीचे गिराऊं तभी तो मैं अच्छा बन पाऊंगा। अपनी लकीर को बड़ी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी लकीर ज्यों की त्यों रख के दूसरे की लकीर मिटा करके अपने को बड़ा साबित करना, इसका नाम अहंकार है। और अगर अशांति का कोई कारण है तो यही एक कारण मुझे समझ में आता है। व्यक्ति यहाँ पर सब योग्य हैं, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी भी है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है। हम अपनी क्वालिटीज़ को उससे कंपेयर करते हैं और डिफीट करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसकी कोई बुराई बता करके उसे डिफीट करते हैं। सबकी कोशिश मैं देखता हूँ, सबकी कोशिश यही, अपन सब देखेंगे, आज शाम को बैठेंगे और यही काम करना है, सोने से पहले जरूर से ये देखना कि क्या मैं ऐसा है तो नहीं करता हूं, और आप पाएंगे कि हाँ हम सब यही करते हैं। बहुत मुश्किल है, दो लोग सामायिक कर रहे थे और दोनों सामायिक से उठे तो एक ने दूसरे से कहा कि आज आपने ठीक से सामायिक नहीं की, आप सो रहे थे सामायिक में। तो उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं सो रहा था, उसने उल्टा ये कहा, ठीक है हम सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, आप क्या कर रहे थे और आप हमें देख रहे थे। हम कभी भी अगर हमारी गलती बताई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं करते बल्कि उसके ऊपर उसका कोई दोष थोप करके अपनी गलती को छिपाने की चेष्टा करते हैं, इसका नाम भी अहंकार है। ये हमारे जीवन का ढंग हमने खुद चुना है, या तो संस्कार बस कह लीजिए, अभ्यास बस कह लीजिए, या वर्तमान का हमारा अपना चॉइस वाला मन। हमें बहुत गौर से अपने इस अहंकार को बहुत निकट से ही देख लेना। हम आकर के बैठ गए हैं, सपोज करिएगा कोई और हमारे बाजू में आकर के बैठना चाहता है, वो अगर हमसे थोड़ा भी कम है तो हम ऐसे बैठते हैं, अकड़ के बैठते हैं, हाँ बैठे रहो बाजू में एकदम, तो छोटे यहाँ काय को बैठे हो, वहाँ थोड़ा पीछे बैठे हो, देख नहीं रहे हो यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आकर के बैठे हैं, वहाँ बैठे हो, वहाँ ऐसा आ जाता मन में, नहीं आता है। अरे मैं अब यहीं की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब भी देख लें आप यहीं भीड़ में ही, आप जिसको पसंद नहीं करते होंगे वो अगर बाजू में आके बैठ जाए तो ऐसे हिराकत से देखेंगे जैसे कीड़ा मकोड़ा हो आके बैठ गया, आदमी है। हाँ ये हमारे जीने का ढंग है, हम करेंगे बात मारदव धर्म की, जरा समझ तो लें कि हम किस तरह जी रहे हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे तो हमारे भीतर मारदव धर्म तो हमारा स्वभाव है, ये थोड़ा अहंकार वॉश आउट हो जाए, ये अहंकार थोड़ा सा हट जाए ना तो वो तो प्रकट होने के लिए तैयारी है। हर आदमी के भीतर सोता है एक झरना,
हर आदमी के भीतर सोता है एक झरना इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की कठोर परतें हटाए और एक नई धार जीवन की बहाए। हम सबके भीतर वो चीज है लेकिन कहीं कोई परत हमारे ऊपर कठोरता की जम गई है जो हमारे भीतर की उस मृदुता को हमारे भीतर के उस स्वभाव को प्रकट होने नहीं देती। ये एक के बाद एक परतें हम मान कषाय की अपने ऊपर चढ़ाते चले जाते हैं और अंततः अपने ही गुणों को ढकते चले जाते हैं और हमारे अवगुण हमें स्वयं ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुण छिपते चले जाते हैं, अवगुण हम छिपाते चले जाते हैं। बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। अहंकार दोनों चीज एक साथ करता है कि गुणों को ढकता चला जाता है, अवगुण को छिपाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तब हम ना अपने गुणों को बढ़ा पाते हैं ना अपने अवगुणों से मुक्त हो पाते हैं। अगर हम इस अहंकार को एक तरफ हटा दें तो संभव है कि हमारे जीवन में कोई शांति और कोई सुख प्राप्त हो। हर व्यक्ति एक क्षण ऐसा आता है कि जब दूसरे के चरणों में अपना माथा रखने की चेष्टा करता है, हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन एक क्षण के बाद ऐसा भी क्षण आता है कि जब जिसके चरणों में हम माथा रखने की चेष्टा करते हैं उसी के माथे पर अपने चरण रखने के लिए भीतर ही भीतर तत्पर हो जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी बात तो नहीं कह दी? आप थोड़ा सा गौर से सोचना मेरे उस कहे हुए को। कभी कभी हम जिन चरणों में अपना माथा टेकते हैं भीतर भीतर मन तो ऐसा होता है कभी कभी कि जिन चरणों में माथा टेका है अब उन्हीं पर उन्हीं उसी पर अपने चरण उस माथे पर अपने चरण रख। एक बार की घटना है, मैं आपसे कहूं। एक व्यक्ति के यहां दूसरा व्यक्ति मेहमान की तरह गया और मेहमान को तो मेहमान की तरह इज्जत मिलनी चाहिए, उसके मन में यह था। और जब वो पहुंचा तो जो मेजबान था, घर का मालिक था, उसने जरा भी स्वागत नहीं किया और दरवाजे में पहुंच करके उसने कहा कि मैं आपका मेहमान हूं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, अगर आप आए हैं तो आ जाइए बैठिएगा। उसने कहा कि क्या आप नहीं जानते हैं मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक कुर्सी खींच लीजिएगा, बैठिए बैठिए कुर्सी बैठिएगा, अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो कुर्सी बैठिएगा। उसने कहा आप मेरी इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो उसने कहा यू कैन टेक टू चेयर्स, तो फिर दो ले लीजिए, एक ऊपर एक रख लीजिए, मेरे सिर पे मत बैठिए, कुर्सी बैठिएगा। ये क्या चीज है? ये अहंकार। ऐसा हम प्रकट में नहीं करते हैं पर भीतर भीतर हमारे इसी तरह की कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है। हम दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, हम दूसरे के अपमान के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। असल में दूसरे के अपमान में हमें अपना सम्मान दिखाई पड़ता है और दूसरे के सम्मान में हमें अपना अपमान दिखाई पड़ता है, इसलिए ये है। लेकिन अभी भेदभाव तो है, अभी भेदभाव गया नहीं, अभी भेदभाव अभी है। देखो तो मजा, हमने किसी का अपमान नहीं किया लेकिन किसी का सम्मान किया है तो दूसरे को अपमान मालूम पड़ता है। यह क्या चीज है? यह अपात्रता है। जो विनयवान है वो पात्र है और जो अहंकारी है वो अपात्र है। जिसे मिल जाने के बाद कहता है कि मेरी योग्यता नहीं थी, देने वाले की कृपा, और जिसे नहीं मिलता है तो कहता है देने वाले ने बहुत दिया पर मैं ही उस लायक नहीं था। ये पात्र की परिभाषा है, ये विनयवान की परिभाषा है। और अपात्र और अविनयी का लक्षण ये है कि जिसे नहीं मिलने पर कहता है बड़ा पक्षपात है, हम तो इस योग थे लेकिन हमको दिया नहीं, देने वाले की गलती है। और अगर मिल भी जाता है तब भी यही कहता है कि औरों को जब इतना ज्यादा मिला तो हमें इतना सा दिया है। नहीं मिलने पर और मिल जाने पर, दोनों स्थितियों में जो अहंकारी है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। हमें स्वयं अपने भीतर इस चीज के लिए झांक करके देखना चाहिए कि हमारे हमारे जीने का ढंग कैसा है, दो में से कोई एक प्रकार का होगा। हमें दूसरे के सम्मान में अपना सम्मान महसूस करना चाहिए और यहाँ दूसरे के अपमान में अपना ही अपमान महसूस करना चाहिए, यदि हम विनयवान होना चाहते हैं तो। और अगर हम अपनी वही चाल चलते रहेंगे कि जब जब किसी और को सम्मान मिला तो हमें लगा कि हमारा अपमान हुआ, या कि जब किसी और को अपमान मिला तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, मेरा इसी में सम्मान है, इस तरह की जो बुद्धि है वही तो अहंकार की बुद्धि है। हमें इस बुद्धि से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। तीनों प्रकार से हमें विनय लाने की कोशिश करनी चाहिए, मन के स्तर पर भी, वाणी के स्तर पर भी, और कर्म के स्तर, शरीर के स्तर पर भी। तीनों में हम विनय लाएं तो इस अहंकार से, हमने अपने अहंकार को तो देख लिया, और भी बहुत सारी बातें हो सकती भैया अहंकार को लेकर के, सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, हम रोज उसी के अभ्यासी हैं, सब लोग उसी अहंकार के अभ्यासी हैं, क्या करें, थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में भी जान लेना चाहिए, इसलिए हमने इसकी बात कर ली। आज मान कषाय की बात करने की नहीं थी, आज तो मान कषाय को कैसे तोड़ें, हैं? मान महा विस्वरूप नीच गति, क्या कहते हैं, हाँ, अगर हमें ले जाता है तो नीची गति में ले जाता है ये मान, और तिरंच तक बना देता है। अगर हमें ध्यान हो, हाथी की पर्याय में पहुंच गए थे मुनि महाराज जी, किस वजह से पहुंच गए थे, एक महीने तक माशोपवास करने वाले मुनि महाराज एक दिन गमन कर गए और दूसरे महाराज उनकी जगह आकर के बैठ गए, लोग तो ये समझे कि वो ही हैं, इसलिए उनकी बहुत पूजा आदर सत्कार किया और वे चुपचाप बैठे रहे, अपना सम्मान करवाते रहे। एक भी बार मन में ये नहीं कहा कि नहीं भैया मेरा सम्मान मत करो, मैं वो नहीं हूँ, वे तो चले गए हैं, मैं तो आज ही आया हूँ, ये नहीं कहा और मायाचारी पूर्वक बैठे रहे, तो क्या हुआ, हाथी की पर्याय प्राप्त हुई थी, ये उसी की लाइनें हैं। मायाचारी से मरण को प्राप्त होकर के और तिरंच गति को प्राप्त किया था उस मान कषाय से प्रेरित होकर के। हम ऐसी बहुत सारी मान कषाय की घटनाओं को जानते हैं, इसके बाद भी अगर अपने मान को नहीं छोड़ पाते हैं, मन का विनय क्या है, मन की विनम्रता क्या है, तो कहते हैं श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार ही मन की विनय है। वाणी की विनय क्या है, मधुरता, और कर्म या शरीर की विनय क्या है, तो कहते श्रेष्ठ आचरण। इन हाथों से दूसरे की मदद करें, इस मन में दूसरे के लिए अच्छा विचार करें, इस वाणी से दूसरे से प्रेम से बोलें, यही हमारे जीवन में विनय के लिए उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय मुझे तो नहीं सूझता। एक अम्मा चली जाती थी ट्रेन में, वो जिद करती है कि मुझे खिड़की के पास बैठने दो। लोग कहते हैं कि अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई, अरे बच्चे बैठते हैं खिड़की के पास, आप क्यों खिड़की के पास बैठ रही हैं? नहीं भैया, मुझे बैठ जाने दो। तो लोगों ने कहा चलो बूढ़े और बच्चे बराबर ही हैं, बैठ जाने दो। कोई खिसक गया, उसकी जगह पर वो बैठ गई। अब थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा को लोगों ने देखा कि वो अपने बटुआ में हाथ डालती, कुछ निकालती और धीरे से ऐसे छोड़ देती, नजर बचा के छोड़ती। लोगों को थोड़ी देर तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बार बार वो ट्रेन में से बैठे बैठे और कुछ अपनी बटुआ में से निकाल के और नीचे ऐसे छोड़ देती। लोगों ने कहा अम्मा क्या कर रही हैं आप? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम करो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बताओ तो सही कि क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटे, हमारे पास बहुत दिन से कुछ थोड़े अच्छे फूलों के बीज पड़े थे, अब हमको ट्रेन में यात्रा करनी थी, हमने सोचा कि हम रख लें वो बीज, काम आएंगे, मैं जहां से चलूं और ट्रेन में जहां तक पहुंचूं वो सब मेरा देश है, और मेरा देश खुशहाल हो, वहां लोग खुशबू पाएं, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ फूलों के, सुगंधित फूलों के बीज छोड़ती जाती हूं कि शायद बेजमीन में अपने लिए जगह बना करके और वहां से फलेंगे फूलेंगे तो मेरे देश में खुशबू फैलेगी, सब लोग बहुत खुशी होंगे। ये कितना श्रेष्ठ विचार है, ऐसे श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन में विनय लाते हैं। विस्तृत नवका कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। बादल कैसे कितने विनय से भरे हुए और बरस जाते हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में वो बोलते हैं कि परिचय इतना इतिहास कही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं तो एक बादल की तरह हूं, मेरा परिचय कितना सा है, मेरा इतिहास कितना था कि एक क्षण के लिए मैं उमड़ा और प्रेम से बरस के नष्ट हो गया। न मैंने अपना इतिहास लिखा, न मेरा नाम लोगों ने गाया, मेरी तो एग्जिस्टेंस ही दूसरे के सुख के लिए है। ये कितना बड़ा श्रेष्ठ विचार है। यहाँ तो हम अपने नाम के लिए और अपना जीवन भी नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं भैया, हमारा विचार तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए हमारा जीवन काम में आ जावे। ऐसा श्रेष्ठ विचार यहाँ आसपास सब ओर हमारे जीवन से दूसरे के जीवन को जीवन मिले। हम किसी का जीवन दुखी ना करें, क्या ऐसा श्रेष्ठ विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर मन में श्रेष्ठ विचार हैं तो वो मन एकदम विनम्र ही होगा। श्रेष्ठ विचार क्या है? दूसरे की मदद करना, इससे बड़ा और कोई श्रेष्ठ विचार नहीं होता। और वाणी की मधुरता, वाणी की मधुरता या कर्म की श्रेष्ठता, दोनों के लिए एक और छोटी सी घटना अपन समझ लें। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर कहते हैं वो बाद को बहुत बड़े संत हो गए थे, और जब वे संत नहीं बने थे तब एक कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचते थे, साड़ियां बेचते थे। कुछ बड़े उपद्रवी लड़के थे, वे आकर के उनकी दुकान पर एक बार साड़ी मांगने लगे। उन्होंने साड़ी उन्हें दिखा दी, और वे जो लड़के थे वो बड़े घराने के थे। बड़े घराने से मतलब मेरा ये है, खानदानी नहीं थे, पैसे के गरूर में बड़े थे। खानदानी होते तो पैसे का गरूर ना होता। जिसे जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है वो उसकी इज्जत करता है और विनम्र बना रहता है, और जिसे जो चीज ऐसे अचानक हाथ लग जाती है वो तो उसका अहंकार ही करता है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो तप का हो, चाहे किसी भी उपलब्धि का हो। उन्हें अपनी उपलब्धियों का अहंकार था। वे जाकर के और उन बाबा के पास साड़ी खरीदने लगे, ले ली, कहा कितनी कीमत है? उन्होंने कहा 1 रुपया इसकी कीमत। सस्ते का जमाना था, 1 रुपये की धोती। तो उन्होंने कहते हैं कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा ये बताओ बाबा, इस आधे की कितनी कीमत? तो बाबा ने कहा बहुत प्रेम से, कुछ भी मन में बुरा नहीं माना, और कहा 8 आने, 8 आने इसकी कीमत। तो उन बच्चों ने अहंकार में भर करके और फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए और कहा बाबा अब बताओ इसकी क्या कीमत। तो उन्होंने बहुत शांत रह करके बहुत प्रेम से उतनी ही मधुरता से 4 आने पैसे इसकी कीमत है। उन्होंने उसके और टुकड़े कर दिए। बाबा ने फिर भी मधुरता से कहा बेटे इसकी कीमत अब 2 आने हैं। उन्होंने और टुकड़े किए तो 6 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे तक। और इसके बाद जब और टुकड़े करने लगे तो उन्होंने कहा ऐसे ही ले जाओ, अब तो ये किसी के उपयोग की नहीं है, मैं इसके क्या पैसे ले हूं? देख रहे हैं आप, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं एक आदमी के संत बनने के पहले की स्थिति बता रहा हूं। आप क्या सोच रहे थे मैं कहानी सुना रहा हूं? नहीं, वो इसके बाद संत बन गए थे, ये उनके संत बने की निशानी थी उसके पहले। वाणी में वही मधुरता, आचरण में वही विनय, इतना सब होने के बावजूद भी। तो उन बच्चों को बहुत शर्म आई, उनका अहंकार टूटा। उन्होंने कहा बाबा हमने आपका बहुत नुकसान किया, आप पूरी कीमत ले लीजिएगा साड़ी की। उन्होंने कहा नहीं, अब तुमसे कीमत नहीं ले सकता, ये साड़ी तो अब किसी के काम की नहीं रही, ये तो चिंदी चिंदी हो गई। अगर तुम्हें कीमत चुकानी है तो सुनो मैं बताता हूं, जाओ खेत पर जहां लोगों ने कपास उगाया होगा उनके साथ थोड़ी मेहनत करो, जाओ और उस कपास को जिन्होंने काटा होगा उनके साथ थोड़ी मेहनत करो, उस कपास को को, कपास को जब काट करके तकली से और ताना बाना बुन करके कपड़ा बनाया होगा, उनके साथ रह करके थोड़ी मेहनत करो, तुम इसकी कीमत कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि कितने लोगों ने मेहनत करके इस कपड़े को बनाया होगा और तुमने उसे क्षण भर में नष्ट कर दिया। फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इस तरह अहंकार करना ठीक नहीं है। हम दूसरे को अपने आचरण की पवित्रता से और अपनी वाणी की मधुरता से इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। यहाँ हम सब भटके हुए लोग हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें पुकार ले और हमें पुकार के पहले दुलार दे, हमें प्रेम दे, तब हम सुधरने के लिए तैयार हैं। ये श्रेष्ठ विचार है, यही श्रेष्ठ आचरण है, यही वाणी की मधुरता है। हम कोशिश करें, अगर अपने को भी सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने को अपने आप पुकारना पड़ेगा, अपने से ही, अपने आत्मगुणों से ही प्रेम करना पड़ेगा। अहंकार नहीं करना पड़ेगा अपने आत्मगुणों का, बल्कि अपने आत्मगुणों से लगाव होना चाहिए और फिर जो कमियां हैं उन्हें हम उसी प्रेम के माध्यम से सुधार पाएंगे, उसी मधुरता के द्वारा, उसी विनय के द्वारा सुधार पाएंगे। वरना कोई व्यक्ति अहंकार से न सुधरा है न किसी और को सुधार पाया है। विनय बहुत बड़ी चीज है, उससे हमारा भी जीवन सुधरता है भैया और दूसरे का भी जीवन सुधरता है। मैं आपको एक और बहुत छोटी सी घटना कहूँ, और शायद ये कहने वाली चीज़ें नहीं हैं, दसों धर्म ये तो हम कुछ बैठ करके और अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, ये दस धर्म तो जीने की चीज़ें हैं, इनको तो कहना नहीं कहना सब ऐसा ही है, पर क्या करें, हमारे पास अज्ञानता बहुत है, ज्ञान थोड़ा है, तो कुछ सूझता नहीं, अपने जीवन को कैसे संभालें यही नहीं सूझता। तो हमें कोई चाहिए जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन के बारे में कुछ सूझे, तो कि इसे हम कैसा बना लेवें, कैसा कर लेवें, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो जाए। इसलिए है ये एक रिश्ता अपन ने बना लिया है कि आप दो बातें सुनाओ, आपको आती हैं, हम सुनेंगे और अपने जीवन को पहले से अधिक बेहतर बनाएंगे। इसलिए एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं, दो मित्र थे, वो दोनों मित्र इतने अच्छे मित्र थे, दोनों के बीच अति अच्छी मैत्री थी कि कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते थे वो। लेकिन समय का फेर ऐसा आया कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और एक तो बहुत बड़ा साधु बन गया और दूसरा डाकू बन गया। दोनों मित्र इतने अलग अलग हो गए, दोनों के स्वभाव इतने बदल गए, जब उस साधु मित्र ने सुना कि मेरा मित्र डाकू हो गया है तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा। लोगों ने कहा, वो किसी की नहीं सुनता, वो तो बहुत बहुत क्रोधी, बहुत अहंकारी, बहुत मानी हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा। लोगों ने कहा, चले जाओ, वो भी जंगल में ही कहीं मिल जाएगा, तुम तो खुद ही जंगल में ही तो रहते हो, कभी खोज लेना। और एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल के रास्ते में वो साधु जाता था तो सामने से उसे लगा कि हो ना हो ये जो घोड़े पर बैठ के आ रहा है ये मेरा मित्र ही है। और सचमुच वो उसका मित्र ही था जो कि डाकू बन गया। जब सामने से निकट आया तो ये रास्ते में बीच में खड़ा हो गया और इसने कहा कि तू मुझे जानता है, मैं तेरा मित्र हूं, तू ऐसा काम मत किया कर, देख तो मैं साधु हो गया हूं और तू डाकू बन गया, तेरे को शर्म नहीं आती। ऐसा कहा तो उस जो डाकू था वो जरा भी विचलित नहीं हुआ, न नीचे उतरा, और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हें क्षमा कर दिया। और कोई इतनी कड़ी बात कहता तो जानते हो ये हंटर रखता हूं अपने पास और वो मैं तुम्हें मार सकता हूं, जान से मार सकता हूं, पर तुम मेरे मित्र हो इसलिए हट जाओ एक तरफ। वो डर के मारे वो साधु एक तरफ हट गया और ये डाकू मित्र आगे निकल गया।
अब बाद में उसे समझ में आया कि ठीक है, अगर मेरा मित्र मेरी बात नहीं मानता है और उल्टा ये कहता है कि रास्ते से हट जाओ, नहीं हटोगे तो मार दूंगा, तो ठीक है, मार ही लेने देते तो ठीक रहता, ये मुझे मार ही तो लेता, लेकिन ये तो सुधर तो जाता। अब की बार मिलेगा तो कहूंगा तू मुझे मारता है तो मार ले, लेकिन तू ठीक हो जा। अब की बार मिलेगा तो ऐसा कहूंगा। और 15 दिन के बंदर अंदर फिर दूसरी बार उस डाकू से फिर मुलाकात हुई। अब की बार रास्ता रोक के खड़ा हो गया और कहा कि तू कहता था ना कि रास्ते से नहीं हटेगा तो जान से मार दूंगा, लो मुझे मार ही दो, मुझसे अब सहा नहीं जाता, तुम अपने जीवन को इस तरह बर्बाद क्यों करते हो, तुम अपने जीवन को बदल लो, मुझे भले ही मार दो। कहते हैं अब की बार वो डाकू सिर झुका करके नीचे उतरा और उसे नहीं हटाया बल्कि अपने घोड़े को बाजू से चुपचाप सिर नीचा किए चला गया, कुछ भी नहीं कहा। ये हक्का बक्का खड़ा रह गया जब तक कि कुछ सोचे सोचे कि कहां चला गया, तब तक तो वो डाकू फिर अपने आगे जाके घोड़े पे सवार होकर के चला ही गया। अरे इस बार फिर मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन इस बार उसने कहा कुछ नहीं है, सिर झुका के चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ के चला गया है, अब मिलेगा तो पैर ही पकड़ लूंगा। और सचमुच 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो डाकू फिर से मिला तो सीधे जा करके और उसके पैर पकड़ लिए और बहुत फूट फूट करके रोने लगा कि अरे मेरे कहने पर भी तू मानता नहीं है, तू अपने जीवन को इस तरह बर्बाद क्यों करता है, ले मेरा जीवन तेरे को सौंपता हूं और मुझे और ज्यादा दुखी मत कर, तू अपने को संभाल ले। कहते हैं कि अब वो डाकू भी रोने रोने को हो गया और उठा करके अपने मित्र को गले से लगा लिया कि अब मुझे लगता है कि मुझे बदलना ही होगा, तुम्हारी विनय तुम्हारी पीड़ा मुझसे अब देखी नहीं जाती, पहली बार भी तुम मिले थे तब तुमने मुझसे उतने प्रेम से नहीं कहा था, दूसरी बार तुमने अपने जीवन को भी दांव पे लगाने का प्रेम दिखाया था और अब की बार तो तुम फूट फूट कर रो पड़े हो, अब तो मुझे लगता है कि मुझे बदलना ही चाहिए, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो। हम अगर जीवन को अपने सुधारना चाहते हैं या दूसरे के जीवन को सुधारना चाहते हैं तो बिना सह अस्तित्व प्रेम अहिंसा और विनय के बिना शायद हम किसी को न सुधार सकते हैं न स्वयं को सुधार सकते हैं। मैं भावना भाऊं भगवान से कि हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हमारे जीवन से अहंकार धीरे धीरे हटे, हमारे वाणी में मधुरता आए, हमारे आचरण में पवित्रता आए और हमारे विचारों में श्रेष्ठता आए और हम इन सब चीज़ों को पाकर भी विनम्र बने रहें, अपनी उपलब्धियों पर हम अहंकार ना करें बल्कि और अधिक अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।